ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। भोटे कोसी बाढ़ प्रभावितों की खोज, बसाव और राहत को व्यवस्थित बनाने के लिए बागमती प्रदेश और सभी प्रभावित स्थानीय तहों में सर्वदलीय संयंत्र बनाने पर सहमति। बचाव और राहत कार्य में संघ प्रदेश और स्थानीय तह आपसी समन्वय के साथ काम कर रहे हैं गृह मंत्री सुदन गुरुंग। भोटे कोसी बाढ़ में अब तक 1066 लोगों की मौत की पुष्टि और रूसी हमले में यूक्रेन में कम से कम 12 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। रसुआ की भोटेकोसी नदी में आई विनाशकारी बाढ़ के कारण अब तक 1066 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। इनमें रसुआ में 43, नुआकोट में 151, धादिंग में 57, चितवन में 321, गोरखा में 66, तनहू में 38, नवलपरासी पूर्व में 216, नवलपरासी पश्चिम में 165 और भारत में 9 शव बरामद किए गए हैं। बरामद शवों में से 1056 शवों की लाश जांच मुचुलका प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जबकि 58 शव परिजनों को सौंपे जा चुके हैं। इसी तरह पहचान नहीं हो पाए 913 शवों का विवरण नेपाल पुलिस की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में बचाव, खोज, राहत वितरण और शवों के प्रबंधन सहित विभिन्न कार्यों के लिए अब तक 7912 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से 4530 लोगों को बचाव किया जा चुका है, वहीं अब तक लापता में से 4606 लोगों की तलाश जारी है। सत्तारूढ़ दल राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी रासोपा द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में भोटेकोसी बाढ़ प्रभावितों की खोज, बचाव और राहत कार्य को व्यवस्थित बनाने के लिए बागमती प्रदेश तथा सभी प्रभावित स्थानीय तहों में सर्वदलीय संयंत्र बनाकर आगे बढ़ने पर सहमति बनी है। सिंह दरबार में आज हुई प्रमुख राजनीतिक दलों के दूसरे स्तर के नेताओं की बैठक ने सभी दलों को एकजुट होकर आपदा के प्रति कार्य में जुटने की आवश्यकता पर जोर दिया। इसी तरह बैठक में आपदा के बाद पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए भी राजनीतिक संयंत्र बनाकर राष्ट्रीय सहमति के साथ आगे बढ़ने पर सहमति बनी। बैठक के बाद राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के प्रवक्ता जगदीश खरेल ने यह जानकारी दी। इसी तरह बैठक में आपदा के बाद खोज, बचाव और राहत वितरण में सरकार के कामकाज पर चर्चा हुई। इसे और प्रभावी बनाने के लिए राजनीतिक दलों ने अपनी ओर से सुझाव दिए। नेपाली कांग्रेस के प्रवक्ता देवराज चालिसे ने यह जानकारी दी। कांग्रेस के नेता चालिसे ने बताया कि बैठक में राष्ट्रीय संकट के समय नागरिकों की जान माल की सुरक्षा के लिए सभी को एकजुट होकर काम करने का सुझाव दिया गया। नेकपा एमाले के प्रवक्ता प्रदीप ग्यावाली ने कहा कि नेपाल के संविधान ने आपदा प्रबंधन को तीनों तह की सरकारों के अधिकार क्षेत्र में रखा है, इसलिए प्रदेश और स्थानीय सरकारों के साथ मजबूत समन्वय आवश्यक है। इसी तरह नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के नेता वर्षमान पुन ने कहा कि संघ प्रदेश और स्थानीय तह की सरकारों के बीच समन्वय नहीं होने के कारण प्रभावित लोगों तक राहत नहीं पहुंच पा रही है। इसी तरह बैठक में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी के प्रवक्ता ज्ञानेंद्र बहादुर शाही ने कहा कि वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण नेपाल को अकल्पनीय क्षति उठानी पड़ी है। विदेश मंत्रालय ने भोटेकोसी बाढ़ में लापता विदेशी नागरिकों के परिजनों से डीएनए प्रोफाइल भेजने का आग्रह किया है। बाढ़ के बारे में जानकारी देने के लिए मंत्रालय द्वारा आज आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलन में बाढ़ में बरामद शवों की पहचान के लिए लापता विदेशी नागरिकों के निकट संबंधियों से डीएनए प्रोफाइल भेजने का आग्रह किया गया। विदेशी नागरिकों के परिजन अपने देश में ही डीएनए प्रोफाइल तैयार करवाकर नेपाल पुलिस के आधिकारिक ईमेल पते पर भेज सकते हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सहसचिव लोक बहादुर पौड़ेल छेत्री ने यह जानकारी दी है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह और जापान की प्रधानमंत्री शानाए ताई ताकाइची के बीच आज टेलीफोन पर बातचीत हुई। आज दोपहर हुई टेलीफोन वार्ता में जापानी प्रधानमंत्री ताकाइची ने भोटेकोसी हिमबाड़ से उत्पन्न आपदा के बाद स्थिति में जापान सरकार की ओर से नेपाल के प्रति एकजुटता व्यक्त की। जापान के विदेश मंत्रालय के अनुसार जापानी प्रधानमंत्री ताकाइची ने नेपाल में आई भीषण बाढ़ में जान गंवाने वालों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि आपदा की इस घड़ी में जापान सरकार नेपाल के साथ खड़ी है। इस दौरान प्रधानमंत्री ताकाइची ने प्रधानमंत्री शाह से बाढ़ के दौरान लापता हुए 5 जापानी नागरिकों की तत्काल खोज और बचाव के लिए आग्रह किया। टेलीफोन वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री शाह ने बाढ़ से हुई क्षति और आपदा प्रबंधन के लिए नेपाल सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के बारे में जानकारी दी। राष्ट्रीय सभा की बैठक में राष्ट्रीय दलित आयोग की वार्षिक रिपोर्ट पेश की गई। आज की बैठक में प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की ओर से कानून न्याय तथा संसदीय मामलों की मंत्री शोभिता गौतम ने राष्ट्रीय दलित आयोग की आर्थिक वर्ष 2080-81 की वार्षिक रिपोर्ट सभा के समक्ष प्रस्तुत की। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक आगामी भाद्र 23 गते दोपहर 1:15 पर होगी। भोटेकोसी और त्रिशूली नदी का जलस्तर सतर्कता सीमा से नीचे रहने के बावजूद उच्च सतर्कता बरतने का आग्रह किया गया है। जल विज्ञान तथा जल संसाधन अनुसंधान केंद्र बाढ़ पूर्वानुमान महाशाखा ने भोटेकोसी में भाद्र 10 गते आई बाढ़ के बाद दोनों नदियों में पानी का बहाव कम होने के बावजूद सतर्क रहने का आग्रह किया गया है। रसुआ बाढ़ के बाद लापता जुमला जिले के नागरिक में से अब तक 28 लोग संपर्क में आए हैं। पातारासी गांव पालिका से रोजगार के लिए रसुआ पहुंचे 76 लोगों में से अब तक केवल 23 लोग संपर्क में आए हैं। गांव पालिका अध्यक्ष पूर्ण सिंह बोहरा ने यह जानकारी दी है। प्रमुख जिला अधिकारी तेज प्रकाश प्रसाई के अनुसार स्थानीय तह से प्राप्त विवरण के आधार पर रोजगार के लिए जुमला से रसुआ पहुंचे 99 लोगों के नाम और पते की पुष्टि हुई है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटिसीको कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *14# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। गृहमंत्री सुदन गुरुङ ने कहा कि बाढ़ प्रभावितों के उद्धार और राहत के लिए राज्य का सभी संयंत्र का परिचालन किया गया है। राष्ट्रीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण में आज आयोजित पत्रकार सम्मेलन में गृहमंत्री गुरुङ ने कहा कि संघ प्रदेश और स्थानीय तहों के आपसी समन्वय में उद्धार और राहत का काम हो रही है। रसुआ की भोटेकोसी नदी में आई बाढ़ से प्रभावित नागरिकों के बचाव और राहत के लिए कर्णाली प्रदेश सरकार 2 करोड़ रुपए की सहायता देगी। प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय सुरखेत के वीरेंद्रनगर में आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक ने रसुआ बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत, बचाव, पुनर्वास तथा क्षतिग्रस्त संरचनाओं के पुनर्निर्माण एवं आपदा प्रबंधन के लिए प्रदेश सरकार की ओर से प्रधानमंत्री दैवी प्रकोप उद्धार तथा राहत कोष में 2 करोड़ रुपए जमा करने का निर्णय लिया है। भोटेकोसी नदी में आई बाढ़ के कारण घायल होकर उद्धार किए गए और महाराजगंज स्थित शिक्षण अस्पताल लाए गए 27 लोगों का उपचार जारी है। अस्पताल के प्रवक्ता डॉ. गोपाल शेढ़ाई ने बताया कि अस्पताल में लाए गए कुल 67 मरीजों में से 27 लोगों का उपचार किया जा रहा है। राष्ट्रीय बाल अधिकार परिषद ने भोटेकोसी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के बच्चों को तस्वीर तथा श्रव्य दृश्य सामग्री सोशल मीडिया और संचार माध्यमों पर पोस्ट न करने की सभी संबंधित पक्षों से अपील की है। परिषद के अधिकारी एवं सूचना अधिकारी राम बहादुर चंद ने आज एक सूचना जारी करते हुए बच्चों की निजता बनाए रखना आवश्यक होने के कारण ऐसी सामग्री सोशल मीडिया पर पोस्ट न करने का आग्रह किया है। नेपाल टेलीकॉम ने भोटेकोसी बाढ़ से प्रभावित 3 और साइटों को फिर से संचालित करने की जानकारी दी है। आज धादिंग के कल्लेरी तथा नुआकोट के भद्रटार, थप्रेक और पुसनटार साइटों को पुनः संचालित किया गया है। नेपाल टेलीकॉम के अनुसार इसके साथ ही बाढ़ से प्रभावित उसके कुल 120 साइटों में से 113 साइट अब फिर से संचालन में आ गए हैं। चीन सरकार ने नेपाल चीन सीमा के उत्तरी नाके तातोपानी के पार स्थित झांगू पोर्ट को अनिश्चित काल के लिए बंद किए जाने की जानकारी ईमेल के माध्यम से दी है। संभावित आपदा को ध्यान में रखते हुए चीनी सरकार ने तातोपानी भंसार कार्यालय के भंसार अधिकारी तल बहादुर पांडे को इसकी जानकारी दी है। पांडे के अनुसार रसुआ में आई बाढ़ जैसी बाढ़ तातोपानी नाके से होकर बहने वाली भोटेकोसी नदी में भी जाने की आशंका को देखते हुए चीनी पक्ष ने नाका बंद किया हो सकता है। उनके अनुसार चीनी अधिकारियों ने रसुआ में आई बाढ़ और उससे हुई क्षति को ध्यान में रखते हुए झांगू पोर्ट से सीमा शुल्क संबंधी कामकाज बंद कर दिया है। साथ ही वहां के कर्मचारियों और प्रशासन को ऊपरी सुरक्षित क्षेत्र में स्थानांतरित कर दिया गया है। भारत के पिथौरागढ़ में नेपाल भारत सीमा समन्वय समिति की बैठक संपन्न हुई है। बैठक में सीमा क्षेत्र में उत्पन्न होने वाली समस्याओं तथा साझा हित के विषयों को आपसी संवाद, समन्वय और स्थापित तंत्र के माध्यम से हल करने पर सहमति बनी है। दोनों पक्षों ने सीमा क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिबद्धता भी व्यक्त की है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रूसी बलों ने यूक्रेन में राजधानी कीव समेत कई शहरों में बड़े पैमाने पर हमले किए हैं। इन हमलों में कम 12 लोग मारे गए हैं, जिनमें एक भारतीय नागरिक भी शामिल है। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लोदिमीर जेलेंस्की ने यह जानकारी दी है। जेलेंस्की ने बताया कि रूसी हमले में दर्जनों लोग घायल हुए हैं। भारतीय शख्स की मौत की जानकारी ऐसे समय में आई जब एक दिन पहले ही पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। इस दौरान पीएम मोदी ने कभी खत्म न होने वाले युद्धों से निकलने की बात कही थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में जेलेंस्की ने कहा कि रूस हमले के बाद हालात से निपटने का काम चल रहा है। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने बताया कि रूस में हमले में बड़ी संख्या में जेट पावर्ड ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। हमले में रिहायशी इमारतों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को भी निशाना बनाया गया है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 20.7 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भोटेकोसी बाढ़ प्रभावितों की खोज, बचाव और राहत को व्यवस्थित बनाने के लिए बागमती और सभी प्रभावित स्थानीय तहों में सर्वदलीय संयंत्र बनाने पर सहमति। बचाव और राहत कार्य में संघ, प्रदेश और स्थानीय तह आपसी समन्वय के साथ काम कर रहे हैं गृह मंत्री शोधन गुरुंग। भोटेकोसी बाढ़ में अब तक 1066 लोगों की मौत की हुई पुष्टि और रूसी हमले में यूक्रेन में कम से कम 12 लोगों की मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।